क्या आप जानते हैं कि आप परी कथा की कहानियों को एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और कई अन्य पॉडकास्टिंग एप्स और वेबसाइटों पर सुन सकते हैं? अधिक जानने के लिए बालगाथा.com पर जाएं।
अहिल्या बाई होलकर। कैसे ये सुंदर घोड़े और हाथी हैं? इन्हें यहां कौन लाया? अहिल्या किलक उठी। अनमनी सी होकर उसने निगाहें उन सुंदर जानवरों से हटाई। जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। वह जल्दी से मंदिर के अंदर गई और दिया बाल दिया। अहिल्या ने आंखें मूंदी और प्रार्थना करने के लिए झुक गई। उसे पता नहीं था कि मल्हार राव उसे देख रहे हैं। वे मालवा सूबे के बहादुर और ताकतवर सूबेदार और वरिष्ठ मराठा सामंत थे। पुणे जाते हुए उन्होंने रास्ते में महाराष्ट्र के चौंदी गांव में डेरा डाला था। अहिल्या जिनकी प्रशंसा कर रही थी, वे उनके ही हाथी और घोड़े थे। उसमें कुछ खास बात है। वह मेरे बेटे खांडेराव के लिए अच्छी दुल्हन रहेगी, मल्हार राव ने सोचा। उन दिनों कम उम्र के बच्चों की शादियां हो जाया करती थी। इंदौर की ओर अहिल्या गांव के सरपंच मानकोजी शिंदे की बेटी थी। वह चरवाहों के परिवार की बेटी थी। उन दिनों लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। समाज मानता था कि महिलाओं का काम बस घर के कामकाज करना और अपने परिवार की देखभाल करना है। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने को महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन अहिल्या के पिता और ही तरह से सोचते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना सिखाया था। अहिल्या और खांडेराव के विवाह के बाद अहिल्या होलकर परिवार की बहू बनकर इंदौर चली गई, जो मालवा सूबे में था। बाकी तो इतिहास है। उनकी नियति में रानी बनना तय था। अहिल्याबाई कौन थी? 300 वर्ष पहले महारानी अहिल्याबाई ने मराठों के मालवा राज पर 28 बरस शासन किया था। 18वीं शताब्दी में मालवा पर उनका शासन इतिहास में प्रभावी और हितकारी शासन के रूप में दर्ज है। उस युग में पेशवा मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। पेशवा मूल रूप से फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ है सर्वप्रथम या प्रमुख मंत्री। यह मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री को दी गई एक पदवी थी। अपने चरम पर मराठा साम्राज्य तमिलनाडु में तंजावुर से पेशावर तक फैला था, जो अब पाकिस्तान में है। ग्वालियर के शिंदे और इंदौर के होलकर मराठा साम्राज्य की उत्तरी सीमा के सशक्त प्रहरी थे। मल्हार राव होलकर शासन के संस्थापक थे। वे विशेष रूप से मध्य भारत में मालवा के पहले मराठा सूबेदार होने के कारण जाने जाते हैं। उनके बाद मालवा का शासन अहिल्या बाई ने संभाला। वह एक महान रानी थी। उन्होंने आक्रमणों के कारण नष्ट हुए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया और नर्मदा नदी के तटों पर घाट भी बनवाया। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के नाम से जानी जाती थी। संस्कृत में यह सम्मान केवल निर्दोष चरित्र के लोगों को ही दिया जाता है। उतार चढ़ावों से भरा जीवन। जब उनके जीवन में एक बड़ी त्रासदी घटी, तब अहिल्याबाई कुल 21 बरस की थी। मराठों ने राजस्थान में कुंभेर किले की घेराबंदी की हुई थी, जो उस समय राजपूतों के अधीन था। खांडे राव को तोप का गोला लगा और उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। पलक झपकते ही अहिल्याबाई के लिए सब उजड़ गया। अहिल्याबाई स्तब्ध थी। उन दिनों के चलन के अनुसार वह सती होने के लिए तैयार थी। उस समय हिंदू औरतें पति की मृत्यु के बाद सती हो जाया करती थी। वे अपने पति के साथ ही अपने जीवन का अंत करने के लिए उसकी जलती चिता में कूद जाती थी। उन दिनों यह गलत सोच प्रचलित थी कि अगर किसी औरत का ध्यान रखने के लिए कोई पुरुष नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ ही है। अब भारत में सती प्रथा बंद है। खांडेराव की दो और पत्नियां थी। बहु विवाह, एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह उस समय आम बात थी, जो उनकी चिता में जलकर सती हो गई थी। फिर बिल्कुल आखिरी क्षण में अत्यंत दुखी मल्हार राव ने अहिल्याबाई को रोक दिया। मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया, तुम चिता में मत कूदो, हमें छोड़कर मत जाओ, मेरे लिए अब तुम बेटे के समान हो। अपने बेटे के मरने के बाद मल्हार राव को अब अहिल्याबाई से ही आशा थी। वे जानते थे कि उनकी बहू उनके बेटे से ज्यादा होशियार है। वह मालवा पर योग्यता और समझदारी से शासन करेगी। संभाल ली राज्य की बागडोर। मल्हार राव ने तय किया कि उनके युद्ध के लिए जाने पर अहिल्याबाई उनके राज्य की देखभाल करेंगी। वे अहिल्याबाई को सुरक्षा और शासन करने का प्रशिक्षण देने लगे। यात्राएं करते हुए वे पत्रों के माध्यम से राजकाल के बारे में प्रशिक्षित करते। मराठा प्रचलन के अनुसार अहिल्याबाई कई बार अपने पति के साथ युद्ध क्षेत्र में गई थी और युद्ध की योजना और उसके संचालन से सुपरिचित थी। एक बार मल्हार राव ने अहिल्याबाई को ग्वालियर में हथियार बनाने का एक कारखाना खोलने का संदेश भेजा। कारखाना चलाने के लिए सैकड़ों कामगार, कुशल निरीक्षक और तोपें खींचने के लिए बैल चाहिए थे, लेकिन बहुत ही कम समय में कारखाना शुरू हो गया। क्योंकि अहिल्याबाई काम के लिए सही लोगों का चयन करने में बहुत कुशल थी। अहिल्याबाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उद्धार। अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, अहिल्याबाई का शासनकाल एक ऐसी अवधि के रूप में लगभग दंत कथा बन चुका है, जिसमें उत्कृष्ट व्यवस्था और सुशासन चलते थे और जनता फल फूल रही थी। वह एक बहुत ही सक्षम शासक और संयोजक थी, जो अपने जीवन काल में बहुत ही सम्मानित थी और मृत्यु के बाद कृतज्ञ जनता ने उन्हें संत माना। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन की ने उन्हें दार्शनिक रानी कहा। ब्रिटिश काल में भारत में कार्यरत अंग्रेज अधिकारी जॉन मैल्कम ने अहिल्याबाई की मृत्यु के बाद उनका जीवन वृत्त लिखा। उन्होंने कहा कि वह आज तक के सभी शासकों में सबसे शुद्ध चित्त और अनुकरणीय शासक लगती हैं। कौन होगा अगला सूबेदार? खांडेराव की मृत्यु के 15 वर्ष बाद मल्हार राव भी चल बसे। वे अहिल्याबाई का सबसे बड़ा समर्थक थे। पेशवाओं ने अहिल्याबाई के बेटे माले राव को सूबेदार बना दिया। वह 21 बरस का था, लेकिन दिन प्रतिदिन के प्रशासन के कामकाज माले राव के संरक्षक के रूप में अहिल्याबाई ही करती थी। दुर्भाग्य से माले राव सिर्फ 9 महीने तक ही सूबेदार रहा। वह एक दिमागी रूप से पीड़ित था और उन्माद के दौरे में उसने एक बुनकर की हत्या कर दी थी। अहिल्याबाई ने अपने बेटे के विरुद्ध जांच करवाई, जिसमें साबित हुआ कि बुनकर निरपराध था। इसके बाद सदमे और अपराध बोध से माले राव की जल्दी ही मृत्यु हो गई। अकेली राह की राही। माले राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने अपने राज्य को गंभीर खतरे में घिरा पाया। अहिल्याबाई के व्यवस्थापक गंगोबा तात्या ने पुणे के पेशवे राघोबा दादा के साथ षड्यंत्र रचकर उन्हें अहिल्याबाई के राज्य की बागडोर संभालने के लिए माहेश्वर आने का निमंत्रण दिया। राघोबा दादा मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा माधवराव पेशवे के चाचा थे। वह हमेशा पेशवा बनने के सपने देखते थे और ऐसा न होने से बहुत गहराई तक आहत थे। गंगोबा तात्या का संदेश मिलने पर राघोबा दादा ने अवसर को लपक लिया। उन्होंने चुपचाप और बड़े ही छल से माहेश्वर जाने की तैयारी शुरू कर दी। उनकी योजना वहां पहुंचकर अहिल्याबाई को चुनौती देने और मालवा सूबा उनसे छीन लेने की थी। अहिल्याबाई का व्यापक गुप्तचर तंत्र उन्हें हर परिस्थिति के बारे में सूचित रखता था। उन्होंने बिना परेशान हुए अपने विश्वासपात्र सुरक्षा सहयोगी तुकोजी होड़कर को सेनापति बना दिया। उसके बाद उन्होंने माधवराव पेशवा से खुद प्रशासन की देखभाल करने की अनुमति मांगी। उन्होंने अन्य मराठा सरदारों को भी पत्र लिखकर उनका सहयोग और सेना के साथ मदद करने की विनती की। राघोबा दादा माहेश्वर की ओर बढ़े आ रहे थे कि उन्हें अहिल्याबाई का संदेश मिला। आपसे युद्ध करके मुझ पर तो असर नहीं होगा, लेकिन एक औरत से हारने पर आपकी प्रतिष्ठा बहुत प्रभावित होगी। राघोबा दादा उज्जैन पहुंचे। अहिल्याबाई बड़ी आन बान शान से उनसे मिलने पहुंची। वह अपनी पूरी सेना हाथियों और घोड़ों के जलूस की अगुवाई कर रही थी। जब वह अपनी भव्य यात्रा पर निकली तो सहयोग और प्रशंसा भाव से भरी जनता अपनी रानी की शक्ति और भव्यता को देखने के लिए जुट गई। जन साधारण का यह प्रेम, आदर, प्रशंसा भाव और स्वामी भक्ति की उनकी सफलता की सच्ची कसौटी थे। माधवराव पेशवा ने राघोबा दादा को वापस लौटने का आदेश दिया और अहिल्याबाई को मालवा का प्रशासन करते रहने की अनुमति दे दी। अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर नजदीक ही नर्मदा के तट पर माहेश्वर में बसा ली। वैभव के बीच विनम्रता। अहिल्याबाई मराठा साम्राज्य के सबसे समृद्ध शासकों में से एक थी, लेकिन होलकरों ने अपने साम्राज्य की संपत्ति अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए खर्च नहीं किया। महल के बजाय वे एक साधारण से दो मंजिले वाड़े में रहती थी। अहिल्याबाई प्रतिदिन दरबार लगाती थी। 300 बरस पहले भी अहिल्याबाई वे अधिकार देने में समर्थ थी जिनके लिए आज भी महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने वे कानून खत्म कर दिए जो विधवाओं को संपत्ति का स्वामित्व पाने और बच्चे गोद लेने से रोकते थे। उनके शासनकाल में व्यापार में प्रगति हुई और किसान सुखी थे। राजनीतिक संबंध गहरे हुए। राजधानी में कला, संगीत और साहित्य फले और फूले। यह सचमुच एक आदर्श साम्राज्य था। माहेश्वर में बुनकरों, कारीगरों, मूर्तिकारों और कलाकारों को पोषण मिला। मजबूत समाज का ताना बाना। माहेश्वर आज भी महीन सूती और रेशमी कपड़े के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई से मिले प्रोत्साहन के कारण माहेश्वर में बुनकरों की जड़ें जम पाई। अहिल्याबाई ने वहां कपड़ों का एक कारखाना स्थापित किया था। माहेश्वर के कपड़े की बुनाई इतनी बढ़िया थी कि पुणे से पेशवा के दरबार के संपन्न अधिकारी भी यहीं से कपड़ा मंगवाते थे। दूरगामी सोच। अच्छे नायक भविष्य के लिए योजनाएं बना पाते हैं। अहिल्याबाई उन चुनिंदा सामंतों में एक थीं, जिन्होंने पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य के खतरे को भांप लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिश लोगों के लड़ने के तरीके भारतीयों से अलग हैं, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार करने के लिए एक फ्रांसीसी कमांडर को रखा जिसने यूरोपीय तरीके से युद्ध लड़ने के लिए 4 पलटनें तैयार की। 1772 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से निकटता बनाने से सावधान करते हुए पेशवाओं को पत्र लिखा। एक बाघ को जाल बिछाकर या शारीरिक बल से मारा जा सकता है, लेकिन एक भालू हमें गले लगाकर और गुदगुदी करके मार सकता है। लेकिन भारतीय राजा, सामंत और सेनापति आपस में ही लड़ने में व्यस्त थे। किसी में भी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की दूरदृष्टि नहीं थी। यह देखकर अहिल्याबाई के मन को बहुत पीड़ा पहुंची। चिरस्थाई यश। 1795 में अहिल्याबाई का देहांत हुआ। तब वे 70 बरस की थी। उनकी विरासत को सम्मानित करते हुए 1796 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। इंदौर की एक समाजसेवी संस्था सामाजिक भलाई के लिए काम करने वाले लोगों को अहिल्याबाई के नाम से जाना जाने वाला पुरस्कार देकर सम्मानित करती थी। उनकी याद में इंदौर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा रखा गया है। उनके नाम पर ही यहाँ के विश्वविद्यालय का नाम देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय रखा गया। जन को समर्पित जीवन। अहिल्याबाई सशक्त थी और जनता का उन पर अगाध विश्वास था। उनके माहेश्वर के वाड़े के बाहर खुदा हुआ है, मैं अपने प्रजाजनों को सुखी रखने के लिए बाध्य हूं, मैं अपने कृत्यों के लिए उत्तरदायी हूं, मैं जो भी करती हूं उसके लिए मुझे ईश्वर को उत्तर देना होगा।
परी कथा की इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। क्या आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया? यदि ऐसा है तो हम आपकी प्रतिक्रिया या फीडबैक सुनना पसंद करेंगे। ऐसी कई कहानियां आप सुन सकते हैं mlftpodcast.in पर जाकर। इस कहानी का निर्माण गाथा स्टोरी ने किया है।